ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है चिकित्सकों की सुरक्षा हेतु सरकार के उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के महानिदेशक डॉ. अतुल गोयल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर आज दो अहम बातें सामने आई हैं। एक तो सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक नेशनल टास्क फोर्स के गठन का सुझाव दिया है और दूसरा स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय अस्पतालों के जो प्रमुख हैं और संस्थान के प्रमुख हैं उनको एक सलाह के रूप में पत्र लिखा है। दरअसल कोलकाता में एक अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जो सुरक्षा चिंता है उसके मद्देनजर ये कुछ अहम चीजें सामने आई हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आज संज्ञान लिया और स्वास्थ्य मंत्रालय भी अपने महत्वपूर्ण कदमों के साथ इस मामले में केंद्र शासित प्रदेशों और सभी राज्यों के साथ संपर्क में है। हमारे साथ इस चिकित्सकों की और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के मुद्दे पर बात करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय में महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका।
नमस्कार
सर। सबसे पहले तो मैं आज की जो जारी सलाह है स्वास्थ्य मंत्रालय की केंद्रीय अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को लेकर उस सलाह के बारे में आपसे जानना चाहूंगा, क्या कुछ बातें इसमें कही गई हैं?
वैसे तो कार्यस्थल पर उपस्थित चिकित्सक और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु समय समय पर स्वास्थ्य मंत्रालय कुछ न कुछ निर्देश जारी करता रहता है, परंतु आज एक पत्र जारी किया गया है। इससे पहले कि मैं इनके बारे में बताऊं, ये जानना आवश्यक है कि इनकी आवश्यकता पड़ती क्यों है।
जी,
सबसे पहले तो हमारे सरकारी अस्पतालों में जो मरीजों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। इसके अतिरिक्त कई बार बहुत गंभीर रूप से पीड़ित रोगी वहां पहुंचते हैं और ऐसे रोगी की चिकित्सा का प्रयास रहता है, किंतु फिर भी हर एक रोगी का 100% इलाज संभव नहीं होता, जिसके कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इन सभी को मद्देनजर रखते हुए सुझाव दिए गए हैं। उसमें सर्वप्रथम ये कहा गया है कि हमारे करीब 25 राज्यों के पास विधान भी है और दंडात्मक प्रावधानों का जिक्र भी किया गया है, तो अस्पतालों में इन सभी दंडात्मक प्रावधानों का उचित प्रदर्शन होना चाहिए, ताकि अगर कोई कुछ गलत तरह का कार्य कर रहा है तो सोचे उससे पहले। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी की इष्टतम संख्या अस्पताल के उचित संस्थानों पर करने की बात कही गई है। एक कंट्रोल रूम बनाने की बात कही गई है जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पहले से है, जो ऐसी बातों का तुरंत संज्ञान ले, अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ है तो तुरंत उसके लिए एक्शन ले। संस्थान में सुरक्षा कर्मियों के पर्याप्त संख्या की भी बात कही गई है। हालांकि सुरक्षा कर्मी काफी होते हैं अस्पताल में, लेकिन हमारे सरकारी अस्पतालों में जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वो कहीं ज्यादा हैं। अगर आप प्राइवेट संस्था में जाएंगे तो आपको जनरली एक गेट मिलेगा एंट्री के लिए और वहीं से एग्जिट होगा, लेकिन हमारे सरकारी अस्पताल क्योंकि बहुत बड़े बड़े हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स कहीं हैं, तो उनको भी कम करने की बात कही गई है। दूसरा, जो सुरक्षा कर्मी है उनकी ट्रेनिंग अच्छे से करना, ताकि वो कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सकें। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि सारे स्टाफ को ट्रेन करना है कि कोई भी तनाव की स्थिति को हैंडल कैसे करना है। जरूरी नहीं है सारी तनाव की स्थितियां लड़ाई झगड़े से ही दूर होंगी। अगर आप पेशेंटली जो रोगी हैं उनके रिश्तेदारों से बात करेंगे तो बहुत हद तक ये समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होंगी। फिर ये भी कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं अस्पताल के जहां सबका आना जाना उचित नहीं है, जैसे आईसीयू के पास है, तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंट्री अलाउ नहीं करनी चाहिए हर रिश्तेदार की। हम ये चाह रहे हैं कि हर अस्पताल पासेज इशू करे रिश्तेदारों के लिए, ताकि एक या दो से ज्यादा अधिक रिश्तेदार किसी भी मरीज के साथ रहे ना, ताकि भीड़ की स्थिति ना उत्पन्न हो और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बने किसी भी तनाव की स्थिति में। तो ऐसे कुछ प्रावधानों का जिक्र किया गया है।
खासतौर पर जो सरकारी अस्पताल हैं, संस्थान हैं, वहां पर ये बहुत बड़ी सुरक्षा की चिंता रहती है क्योंकि भीड़भाड़ वहां बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे में एक डेजिग्नेटेड और ट्रेन्ड सिक्योरिटी फोर्स की भी तैयारी की इन सलाह में बात कही गई है। इस बारे में हमें बताएं कि किस तरह से सुरक्षा को बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी और खासतौर पर जो अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, इस लिहाज से ये जो ट्रेन्ड फोर्स है वो कैसे मददगार होगी?
सुरक्षा कर्मी अगर इस तरह की तनाव की स्थिति को हैंडल करने में ट्रेंड होंगे तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाएगी। लेकिन सुरक्षा कर्मियों की ट्रेनिंग अस्पतालों में तो समय समय पर दी जाती है। कुछ और प्रोविजंस हैं जिससे सुरक्षा कर्मियों को एम्पावरमेंट मिलेगी या उनको सख्ती करने में आसानी रहेगी। ये बोला जा रहा है कि सारे जो भी कर्मचारी अस्पताल में काम करते हैं उनको एक प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए और वो आइडेंटिटी कार्ड वो हर वक्त पहने ताकि सुरक्षाकर्मी ये भी जान पाए कि कौन सही व्यक्ति अस्पताल में प्रवेश कर रहा है और कौन गलत व्यक्ति अस्पताल में प्रवेश कर रहा है। फिर ये भी बात की गई है कि ट्रेन सोशल वर्कर्स अवेलेबल हो जो कि तनाव की स्थिति को उत्पन्न होने में रोके भी और अगर हो गई है तो उसको थोड़ा संवेदनशीलता से हैंडल करें ताकि उसको वहीं पर डिफ्यूज किया जा सके, आगे ना बढ़े बात, कोई लड़ाई झगड़ा या मारपीट तक ना पहुंचे।
चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह में एक विशेष कदम है जिसका आपने जिक्र किया कि अस्पतालों में एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि जो मॉनिटरिंग है, रिस्पांस है, उसको इससे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। किस तरह से सुरक्षा इससे बढ़ेगी और कैसे ये इस तरह के कंट्रोल रूम जो कि खासतौर पर उन क्षेत्रों में जहां पर केंद्रीय अस्पतालों में भीड़ बहुत ज्यादा है उस लिहाज से ये रिस्पांस में ये मदद करेंगे?
देखिए, शाम को 4-5 बजे तक तो पूरा अस्पताल फंक्शन करता है, उसके बाद जो इमरजेंसी आपातकालीन विभाग है वहां पे भीड़ बहुत होती है, उसी जगह पे ये कंट्रोल रूम्स का प्रावधान किया गया है। उस कंट्रोल रूम में एक वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहता है सारी रात और अगर कोई भी प्रॉब्लम उत्पन्न होती है सुरक्षा से संबंधित या रोगियों और चिकित्सकों के बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो उसको हैंडल कर सकता है, वो दोनों को ही समझा सकता है। वो अचानक सुरक्षा कर्मियों को, एक्स्ट्रा लोगों को वहां भेज सकता है ताकि तनाव की स्थिति को रोका जा सके।
आपने जैसा कि एंट्री और एग्जिट प्वाइंट का जिक्र किया तो सुरक्षा के संबंध में ये एक अहम मुद्दा इन दिनों आया भी है जिसमें कि एंट्री रिस्ट्रिक्शन की बात की जा रही है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी सलाह में कोई इस मामले में प्रोटोकॉल की बात कही गई है कि किस तरह से एंट्री एग्जिट पर रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए? आई कार्ड का तो आपने जिक्र किया ही, लेकिन और कोई बात आप बताना चाहेंगे जिससे कि जो गैर जरूरी प्रवेश है उसको रोका जा सके?
हाँ, आप सही कह रहे हैं कि गैर जरूरी प्रवेश को रोकना उचित है। उसके लिए सबसे पहले तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का नंबर लिमिट करना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी संस्थान में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होंगे तो आप जितनी मर्जी सिक्योरिटी बढ़ा लीजिए, उनकी ना एंट्री रोकी जा सकती है ना एग्जिट रोका जा सकता है। तो इसलिए यह सलाह दी गई है कि शाम को 4 बजे के बाद सिर्फ जो जरूरी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको खुला रखा जाए ताकि उन पर सुरक्षा बढ़ाई जाए और उनको ठीक से मॉनिटर किया जाए। साथ ही अगर वहां पे सीसीटीवी होंगे और उनको मॉनिटर किया जाएगा तो हमें पता रहेगा कौन ऑथराइज्ड एंट्री हो रही है, कौन सी अनऑथराइज्ड एंट्री हो रही है, उस पर नजर रखी जा सकेगी।
क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी रही है डॉक्टर अतुल, जैसे कि अगर एक मरीज के साथ परिवार के सदस्य आते हैं और ये स्वाभाविक भी है कि अस्पतालों में एक मरीज के साथ एक बड़ी संख्या में कई बार परिवार के लोग आना चाहते हैं, ऐसे में सुरक्षा की चिंता को प्रबंधित करना कितना बड़ा इस मामले में एक चैलेंज रहा है, और आप अपने अनुभव से भी हमारे श्रोताओं को बताएं कि इस चैलेंज को दूर करने के लिए किस तरह के कदम बहुत जरूरी हैं।
इस चैलेंज को दूर करने के लिए कुछ कदम सजेस्ट किए गए हैं, लेकिन पहले ये जानना चाहिए कि हमें क्यों इतने सारे लोग आते हैं। कई बार हमारे सरकारी अस्पतालों में मरीज के साथ लोग इसलिए भी ज्यादा आते हैं क्योंकि अटेंडेंट्स नहीं होते हमारे पास। जैसे एक्सरे करवाना है किसी का, एमआरआई करवाने ले जाना है तो अक्सर रिश्तेदार ले जाते हैं
जी।
तो हमने ये बोला है अस्पतालों को कि सफिशिएंट नंबर ऑफ अटेंडेंट्स वो उसका इंतजाम करें ताकि सिर्फ एक या दो रिश्तेदार अंदर रहे, बाकी सब बाहर रहें और अस्पताल के लोग ही ये टेस्ट वगैरह करवाएं ताकि मरीजों के रिश्तेदारों को ये सब ना करना पड़े। दूसरा ये है कि मिलने का समय जब होता है अस्पतालों में, अक्सर हमारे अस्पतालों में अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, पूरा का पूरा परिवार मिलने जाता है। इसके कंपेरिजन में आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो इवन मिलने के टाइम पे आप पास के साथ ही एंटर कर सकते हो। तो हमने ये प्रावधान किया है कि अब पासेज इश्यू होंगे, एक या दो पासेज इश्यू होंगे हर एक रिलेटिव को, और इवन मिलने के टाइम पे जो ऊपर मिलने के लिए जाए वो पास लेकर जाए, उससे भी एंट्री और एग्जिट हमारा रिस्ट्रिक्ट होगा और भीड़ इकट्ठी जो है वो नहीं होगी अस्पतालों में। और एक बार भीड़ इकट्ठी नहीं होगी तो शायद इन तनाव की स्थितियों को कंट्रोल करना आसान रहेगा।
आपने सीसीटीवी कैमरास के बारे में कहा था
जी,
तो सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरास की उपलब्धता क्यों जरूरी है? क्योंकि हम देखते हैं कि जो इमरजेंसी एरिया है या कैजुअलिटी का इलाका है, ऐसे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बहुत जरूरी होती है, न सिर्फ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ बल्कि पेशेंट के लिहाज से भी। तो इन कैमराज से किस तरह से आपको लगता है कि अगर कोई घटना होती है तो उसके मामले में तीव्र जांच में इससे कैसे मदद मिलेगी और क्यों जरूरी है?
देखिए, अगर सीसीटीवी लगा है कहीं भी तो हर एक व्यक्ति जो सीसीटीवी के नीचे काम कर रहा है वो अपने बिहेवियर को थोड़ा मॉनिटर करेगा। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पेशेंट का अटेंडेंट हो, चाहे वो पेशेंट हो, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी एक्शन लेने से पहले वो दो बार सोचेगा कि मेरा बिहेवियर भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो उससे कुछ हद तक तो प्रिवेंट हो जाता है। उसके अलावा चलिए कोई इंसिडेंट हो गया या कोई तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो कम से कम बाद में ये जानने में तो मदद मिलेगी कि उसका कारण एक्चुअली क्या है।
जी, भारत में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य केंद्र हैं गांवों में, कस्बों में, और हम सभी जानते हैं कि केंद्रीय अस्पतालों के अलावा इन स्वास्थ्य केंद्रों में भी जो स्थानीय निवासी हैं वो बहुत ज्यादा निर्भर हैं अपने इलाज को लेकर, उपचार को लेकर। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ किस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय सुरक्षा के उपायों को लागू करने में तत्पर है, किस तरह से वहां स्वास्थ्यकर्मियों और चिकित्सकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं?
वैसे तो अभी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बनाई है, उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय को कहा गया है कि इसी सुरक्षा हेतु इन्फॉर्मेशन जो भी है वो राज्यों से पहले मांगी जाए कि उनके चिकित्सा संस्थान है उनमें क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं, क्या क्या नहीं है। सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे, फिर जो एडवाइजरी हमने केंद्र संस्थानों को दी है वही एडवाइजरी स्टेट्स को इश्यू करी जाएगी, और एक बार सुप्रीम कोर्ट की टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी तो शायद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से ही राज्य सरकारों को ये सब प्रावधान लागू करने की सलाह दी जाएगी।
तो टास्क फोर्स में कोई स्वास्थ्य मंत्रालय की भूमिका होने वाली है इसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि इसमें कई सुझाव भी दिए हैं, तो इन टास्क फोर्स का क्या एक पूरी रूपरेखा होने वाली है, इस बारे में आप कुछ बता पाएंगे?
टास्क फोर्स के मेंबर्स का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया है कि कौन कौन उसमें रहेंगे। इसके अतिरिक्त तो उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी बताई हैं जो टास्क फोर्स को करना है, और टास्क फोर्स का पूरा मैनेजमेंट स्वास्थ्य मंत्रालय के हाथ में ही है। 3 हफ्ते में इंटरिम रिपोर्ट और 2 महीने में पूरी रिपोर्ट सबमिट करनी है टास्क फोर्स को।
अगर अस्पताल परिसर में कोई डॉक्टर्स या स्वास्थ्य कर्मी के साथ किसी भी तरह की कोई घटना होती है, केंद्रीय अस्पताल है, कोई स्वास्थ्य केंद्र है, तो वहां पर एक संस्थागत FIR दर्ज की जाए, इसके मामले में क्या कुछ है प्रक्रिया?
हालांकि हमारे केंद्रीय सरकार के अस्पताल जो 3 हैं और दिल्ली एम्स है, उसमें तो पहले से ही इंस्टीट्यूशनल FIR दर्ज किया जाता था, लेकिन 16 अगस्त को मंत्रालय ने फिर एक निर्देश जारी किया है जो कि पूरे देश में गया है हर एक संस्थान को। उनको ये बोला गया है कि एक इंस्टीट्यूशनल FIR दर्ज होना चाहिए ऐसे किसी भी केस में, और 6 घंटे से अधिक नहीं लगने चाहिए उसमें। वैसे तो इमीडिएटली होना चाहिए, पर 6 घंटे से ज्यादा नहीं लगने चाहिए कभी भी इस इंस्टीट्यूशनल FIR को दर्ज होने में, क्योंकि अक्सर होता क्या है जब इस तरह की कोई घटना होती है, आमतौर पर जिस डॉक्टर के साथ होती है उसको कहा जाता है कि आप FIR दर्ज कर दीजिए। अब वो डॉक्टर कल को कहीं और जाएगा, सारी जिंदगी वो कोर्ट के चक्कर तो नहीं काट सकता, तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल FIR आवश्यक है, और ये निर्देश जारी कर चुका है स्वास्थ्य मंत्रालय।
पब्लिक बिहेवियर में कुछ बदलाव आए और सुरक्षा की जो चिंता है वो थोड़ी कम हो सके, इस मामले में भी कुछ आप कहेंगे?
हम अक्सर जो डॉक्टर्स डे होता है 1 जुलाई, उसमें कुछ सोशल मीडिया पे कुछ चीजें जारी करती हैं जिसमें ये कहा जाता है कि डॉक्टर अपने मरीजों की चिंता करते हैं और हमारा सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मरीजों की तरफ है, लेकिन हम सब कुछ करने के बाद भी पूरी तरह से हर मरीज को नहीं बचा पाते या रोक पाते, तो हमारे से जो अपेक्षाएं हैं वो ठीक से रखी जाएं। हमारे हाथ में अपना कार्य है, जीवन दान नहीं है, सो हम अपना कार्य करते हैं, जीवन दान ईश्वर देता है।
डॉक्टर अतुल गोयल, आपने बड़े विस्तार से चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा चिंता और उनके लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताए। स्वाभाविक भी है कि, और हम सभी नागरिकों का ये उत्तरदायित्व भी है कि हम सभी भी अपने जो चिकित्सक हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी को हमें भी गंभीरता से लेना होगा, और जो भी सलाह जारी की गई है उनका पालन तो निश्चित रूप से होगा ही, साथ में एक नागरिक के तौर पर भी हमें इस मामले में सजग होना होगा। आप कुछ कहेंगे अंत में?
हाँ, मतलब दोनों ही तरफ से कदम उठने चाहिए। चिकित्सकों को भी संवेदनशील होना होगा, जो अस्पताल मैनेज करने वाले लोग हैं उनको भी ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स जो इमरजेंसी वगैरह देखते हैं उनके लिए प्रॉपर ड्यूटी रूम्स वगैरह हो, रोशनी हो, अस्पताल में डार्क एरियाज ना हो, सुरक्षा का प्रावधान हो। साथ ही साथ मरीजों को भी ये सोच के चलना होगा कि किसी भी डॉक्टर की इच्छा कभी ये नहीं होती कि उनका मरीज सही नहीं हो या मरीज उनका उसका उपचार ना हो। हाँ, कई बार मरीज इतना गंभीर होता है कि आप कुछ नहीं कर पाते, या कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज संभव नहीं होता, तो दोनों ही तरफ से थोड़ा सोच विचार करके आगे बढ़ना होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अतुल गोयल, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने इस विषय पर अपने विचार रखे।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे चिकित्सकों की सुरक्षा हेतु सरकार के उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।